एक प्रश्न और पूछना था।
हाँ।
वहाँ आया है कि अध्येय प्रकरण में दूरस्थम शांति के से वही वस्तु दूरस्थ भी और अंतिक भी कैसे हो।
ठीक है, ये 13वां अध्याय का 15वां श्लोक है। इसमें मानव दूर सम शांति के सतत, दूर से दूर है, नजीक से नजीक है, तो बहिरंत से पूरा श्लोक ऐसे बहिरंत से भूतानाम असरम सर्वेव सूक्ष्म तद्वेग्यम दूर सम शांति के सतत। ये प्रकरण कहाँ चला है? 13वां अध्याय है, ये 13वां 14वां ज्ञान के मुख्य अध्याय है। तो 13वां अध्याय में पहले क्षेत्र क्षेत्र के कहा, इसके बाद ज्ञान का वर्ण 20 साध ज्ञान के बताए, 20 ग्यारहवें तक, 12वें से ज्ञेय बताया, ज्ञान बताया, ज्ञान के द्वारा क्या ज्ञेय होता है उसका वर्णन किया। उस ज्ञेय के वर्णन में ये आया है 18 इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त इद विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। तो ये ज्ञान ज्ञेय बनना है समाप्त किया 18वें श्लोक में। तो 11वें से 18वें तक ज्ञेय का वर्णन है। अब इस ज्ञेय के वर्णन में ये बात आई है, ज्ञेय तत्व क्या है? तो ज्ञेय तत्व जो परमात्मा है उसका वर्णन है। तो परमात्मा दूर से दूर भी है, नजीक से नजीक भी है, बहिरंतस भूतानाम असरम सर्वमेव च। पहले का प्रकरण अगाड़ी का प्रकरण दोनों प्रकरण इस श्लोक में आ जाते हैं। प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है और भीतर भी परमात्मा है, और दूर से दूर भी परमात्मा है और नजीक से नजीक ही परमात्मा है। दूर से सूक्ष्म तद्वेगीय, तो अविज्ञेय क्यों है? कि सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, अभाव होने से अविज्ञेय नहीं है, है ही नहीं, क्या जाने हम, ऐसा नहीं है। सब रहते हुए भी अविज्ञेय है, और विज्ञेय ज्ञेय जानने के योग योनों को ज्ञेय कहते, विज्ञेय विशेषता से जानने के लायक है। ये तुम यज्ञ ज्योतिम शक्यम, शक्यार्थ योग्य तो दोनों अर्थ आता है यत्म, तो ये ज्ञेयम और ये तत्वम ज्ञेय है वो। तो ज्ञेयम ज्ञानम ज्ञानगम्यम हृदय सरस विष्टितम, ये 17वें श्लोक में ज्ञेयम ज्ञानम ज्ञान गम्यम, तो ज्ञान गम्य है, प्राप्त नहीं है ये वस्तु। तो ज्ञेय तत्व ऐसा है, कोई बाहर है भीतर है ऊपर है और नीचे है, और सर असर भी वही है, ज्ञेय तत्व ही है। ये प्राणी है ये भी ज्ञेय तत्व है, क्योंकि वासुदेव सर्वम बताया, वासुदेव सर्वम। थोड़ा ध्यान दें, व्याकरण पढ़े वाले सुगम है, थोड़े कठिन पढ़े पर आप तो व्याकरण के जानकार हैं। तो वासुदेव सर्वम ये बैठता नहीं, वासुदेव सर्व ऐसा करना चाहिए, सर्वत्र त्रिलिंगी है, सर्व होता है सर्वम होता है, तीनों में है। तो वासुदेव तो पुल्लिंग या सर्व नपुंसकलिंग, तो वासुदेव सर्वम नहीं करना चाहिए, वासुदेव सर्व ऐसा करना चाहिए। या विशेष उद्दिश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तया प्रायस्ता एव कर्तव्य समानार्थे विशेषणे, तो विशेष में वही लिंग संख्या भक्ति आनी चाहिए। तो वासुदेव सर्वम क्यों कहा? सर्वम कहने का तात्पर्य है कि जब एक शेष होता है, सर्व सर्वा और सर्वम, अथवा सर्वे और सर्वाह और सर्वाणी, ये सब इकट्ठे किया जाए तो एक शेष होता है, वहाँ एक शेष में नपुंसक ही रहता है, उसमें पुल्लिंग नहीं रहता। अलग पुल्लिंग होता सर्व कह देते तो पुल्लिंग पुल्लिंग तो आ जाते, स्त्रीलिंग और नपुंसक अलग रह जाते, और एक शेष में नपुंसक रहता है। तो नपुंसक में जैसे यज्ञ दानम तपस्व पावनानी, यज्ञो दानम तपस्व पावनानी, यज्ञो दानम तपस्व पावनानी, तो पावनानी करे नपुंसक का, तो नपुंसक करने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक सब आ जाते हैं, तो एक शेष नपुंसक ही रहता है। ये एक शेष प्रकरण में सिद्धांत में खूब वर्णन आया है। तो एक शेष कहाँ रहता है? सामान्य तो नपुंसक रहता है, और किसी में एक शेष रहता है, जैसे गाय आ रही है तो उसमें बैल भी होगा गोधा भी होगा, पर गाय कही जाएगी, बकरी कही जाती उसने लिए जाएगा, घोड़ा आते ऐसे आती है, और बकरी में बकरी शेष रहती है, बकरे होते हुए बकरी शेष रहती है, और घोड़ा में घोड़ी शेष नहीं रहती है, वहाँ घोड़ा शेष रहता है, ऐसे व्याकरण का नियम है। तो सर्व शब्द एक ऐसा है कि जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब आ जाए, तो संपूर्ण लेने के लिए नपुंसकलिंग लिखा, वासुदेव सर्वम। निर्वाण संगति बैठती है तो सब उस परमात्मा ही है। तो वो परमात्म तत्व जो ज्ञेय तत्व है उसका वर्णन है, तो वो दूर भी है नजीक भी है, क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा है तो दूर से दूर भी परमात्मा है, नजीक से नजीक भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है और भीतर भी परमात्मा है, बहिरअंत से भूतानाम और असरम सर्म एवं सर असर भी परमात्मा है, सर असर के बाहर भी परमात्मा है, सर असर के भीतर भी परमात्मा है और सर असर भी परमात्मा है, तभी तो वासुदेव सर्व होगा। तो वासुदेव सर्व इस तत्व को बताने के लिए दूरस्थम शांति के तत्व बताया है। और पूछो।